और बाकी सब जो हम चेहरे देख रहे हैं पुरुष के रूप में स्त्री के रूप में सभी कृष्ण की शक्ति है। इस चीज को समझिए, आत्मा से सभी स्त्रीलिंग जाति के हैं क्योंकि ये शक्ति से उत्पन्न हम भी हुए हैं। वो भी अभी ऊपर से ये चमड़ा ऐसा बना दिया गया है, ये स्त्री का चमड़ा, ये तो कपड़ा है। जैसे अभिनय करने में किसी लड़की को लड़का सजा देते हैं, लड़का थोड़े हो जाएगा, किसी लड़के को लड़की सजा दिया, वो लड़की थोड़े हो गया, कपड़ा हटा दो निकल आएगा। उसी तरह से हमारे आत्मा इसके अंदर में है, एकमात्र कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब लोग स्त्री। इस चीज को समझिए, इसलिए कृष्ण के रास में ऐसा मत देखिए जो परपतियों के साथ में गोपियों ने नृत्य किया और ऐसा, इन चीजों को समझना चाहिए। इसमें हम लोग जुगल भी तभी कल परसों करेंगे, क्रम के अनुसार में चलेंगे। वो थोड़ा सा भूल छप गया, पहले रासलीला हो तब जुगल गीत हो तब अंत में भ्रमर गीत हो, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसको समझना चाहिए, अभी गोपियों से मिलन ही नहीं हुआ और फिर हो गया भ्रमर गीत, ये कैसे संभव होगा, या जुगल गीत हो गया ये कैसे होगा। इसलिए हम लोग प्रारंभ से चलते हैं। इसके बाद में ब्रह्मा की लीला के बाद में अब गोपियां बड़ी हुई है, उनके अंदर में प्रेम प्रकाशित हुआ। यह पूर्व पराग पहला बतलाया, इसी को कहते हैं बेलूगी। इसके बाद में गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया, आप लोग सुने यमुना के किनारे तीर घाट पर कात्यायनी की मूर्ति बना करके सब गोपियां, कौन गोपियां, राज जो कुमारियां हैं वो सब कुमारियां, कौन कुमारियां, जो राम के लीला में जनकपुर की कन्याएं थी राजकुमारियां, जब रामचंद्र जी की शादी जब सीता जी के साथ में हुई तो उनकी इच्छा हुई ऐसा सुंदर वर कहां मिलेगा, यदि हमारी शादी हमारा विवाह भी राम के साथ में हो जाता हमारा जीवन धन्य हो जाता। राम तो भगवान है, मैं क्या आज मैंने तुम लोगों को ग्रहण कर लिया किंतु इस जन्म में नहीं, इस रूप में नहीं, जब मैं कृष्ण होकर के आने वाला हूं उस समय में तुम लोगों को गोपी के रूप में ग्रहण करूंगा, तुम्हारा गोपियों के रूप में जन्म हो और उस समय में तुम लोग हमसे मिले। वही गोपियां अथवा बहुत से ऋषि लोग दंडकारण्य में जब रामचंद्र जी पहुंचे थे वहां दंडकारण्य, बहुत से ऋषि लोग हजारों हजारों, कितने हजार लोग, और वो लोग गोपाल मंत्र से कृष्ण की आराधना कर रहे थे, कृष्ण को पाने के लिए, गोपी भाव पाने के लिए उपासना मार्ग में। इससे बढ़कर के कोई महामंत्र नहीं है, बहुत प्रभावशाली मंत्र। यदि कृष्ण की कोई भक्ति चाहे शुद्ध रूप में गोपाल मंत्र और काम गायत्री जरूर ग्रहण करना पड़ेगा, वैसे योग्य मायावादी सन्यासियों से नहीं और द्वैतवादियों से लेने से नहीं होगा, जो शुद्ध भजन नहीं करता उनके मुख से भी लेने से वो मंत्र नहीं आएगा। जिन्होंने इस मंत्र की साधना की है अपने जीवन में उनसे ये मंत्र लेकर के भजन करने से तब कहीं उसमें प्रवेश होगा। तो वो लोग गोपाल मंत्र में भजन कर रहे थे और रामचंद्र जी को देखा, उनकी उत्कंठा बढ़ गई और बहुत जोरों से भजन कर, राम ने कहा जी देखो ठीक है, तुम लोग कृष्ण लीला के समय में गोपी होगी और तुम लोग हमसे मिले, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण रूप से मैं निभाएंगे। तो वो लोग भी गोपी हुई हैं, ऐसी गोपियां तो जो थी आराधना कर रही हैं कात्यायनी की पूजा। अच्छा, कात्यायनी की तो आराधना की एक महीने के बाद कौन आया, कात्यायनी आई या कौन आया, स्वयं कृष्ण आए अपने कुछ सखाओं के लिए और एक कदम तो वृक्ष के ऊपर में चढ़ गए। चढ़ने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने गोपियों की सारे कपड़े उठा लिए जो स्नान कर रही थी सवेरे और ऊपर चढ़ गए और ऊपर से फिर छिठोली करने लगे। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र कहाँ, कहीं नहीं दिखाई पड़ते, ऊपर देखा कृष्ण हंसने लगे, ऊपर देखा देखा ये सारे कपड़े लेकर के ऊपर चले गए, उनके साथ में कैसी छिठोलियां। और कृष्ण ने जो कुछ कहा सब लज्जा पर त्याग करके और जो कहा वैसा ही किया, उनको प्रणाम किया जैसा कृष्ण ने कहा। यदि कात्यायनी की पूजा करती तो कात्यायनी को आना चाहिए था, कात्यायनी क्यों नहीं आई? यहां पर इस चीज को समझो, वो जोग माया पूर्णिमा जी है कात्यायनी, कृष्ण की शक्ति, वो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश हैं, राधा जी के प्रकाश हैं, कृष्ण स्वयं ही आकर के और आकांक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं थी जो कृष्ण हमारे पर कात्यायनी महामाए महाजोगन विश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः, कृष्ण ही हमारे पर, कृष्ण स्वयं आ गए और उनको अंगीकार किया। अच्छा, अगले वर्ष में शरद पूर्णिमा जब होगी उस समय में तुम लोग की इच्छा पूर्ण नहीं करते, रास विलास इत्यादि, इसलिए एक वर्ष के बाद में वही कृष्ण वहां पर पधारे और पूर्णिमा के दिन में, शरद पूर्णिमा के दिन में उन्होंने बंसी बजाई और उस समय में बंसी बजाने के बाद में गोपियां अपने घरों से निकली, यहीं से रास प्रसंग आरंभ होता है, उन गोपियों को ग्रहण कर लेते। अभी इस पर कीर्तन होने के बाद में सब चीज हम लोग करेंगे, इसका कीर्तन कर गोपी संबंधी भूमि में कुछ और सुनिए। अभी आप लोगों ने सुना कात्यायनी ने की उपासना करने के बाद में कृष्ण ने उनको वरदान किया। अगले शरद पूर्णिमा में हम तुम्हारी आकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन पूरब की तरफ में चांद होगा, एकदम लाल लाल उसकी किरणें, सारे वन में उसकी लाल लाल किरणें छा गई, विशेष करके पूर्व दिशा रूपी अपनी सखी के गालों में मुखारविंद में जैसे गुलाल लगा दिया चंद्र ने अपने प्रेमिका की, ऐसे मालूम हो गया। और उस समय में प्रकृति अत्यंत सुशोभित, एकांत वृंदावन, पूर्णिमा का चांद, चारों तरफ में चंद्र की किरणें, और उस समय में कृष्ण ने जगौ कलौ कलम वाम दिशां मनोहरा, कृष्ण ने अपने आतरों पर पंक्ति लगाई, इसलिए आज उन्हें रमण करने की इच्छा हुई, आज उन्हें राज करने की इच्छा हुई, गोपियों से मिलने की उत्कर, गोपियों ने नहीं बुलाया, कृष्ण रह न सके गोपियों के प्रेम के लिए, आज कृष्ण इतने ऐसे हो गए कि गोपियों को निमंत्रण दिया, कैसे? वेणु के माध्यम, जगौ कलौ कलम वाम दिशां मनोहरा, क्या बजाया? मूर्छना के स्वर से चढ़ाव उतराव के साथ, ऐसा जो गोपियों के सीधे हृदय में वो बाण की तरफ में घुस गया। जब हम कलौ कलौ माने क ल मिला हुआ क्लौ, और वाम दिशा में होता है बाएं से चौथा अक्षर अ आ ई दीर्घई, ये दीर्घई उसमें लगा दो तो क्या हो गया? प्लीज। और मनोहर मन का अधिष्ठात्री देवता चंद्र है, चंद्र माने अनुस्वार वहां, और अनुस्वार को स्पष्ट क्ली पर अनुस्वार लगा दो तो क्या हो गया? क्ली हो गया, क्लिंग क्लिंग, ये समस्त सृष्टि का भी मूल कारण है, प्रेम का उद्गम स्थान है। सब गोपियों ने सोचा ये कृष्ण हमें ही बुला रहे, राधा जी ने कहा ये हमें बुला रहे हैं, ललिता विशाखा चित्रा चंद्रावली पद्मा सब सखियां, मैया ने नहीं सुना, पिता ने नहीं सुना, बहनों ने नहीं सुना और गोपियों ने नहीं सुना, पशु पक्षियों ने नहीं सुना, सुना कौन जिनका ऐसा भाव था। और वे अजगमो अन्यो अन्यम अलक्षित और जमा अपने घर से अपने पतियों को छोड़कर के जो परोस रही थी चल पड़ी, रोटी पका रही थी वो छोड़ करके चल पड़ी, कोई क्या किया अपने पतियों की सेवा कर रही थी छोड़ करके चल पड़ी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी अपनी आंख में एक आंख में काजल लगा रही थी उसको उसी काजल में बाएं आंख में आधा काजल लगाया चल पड़ी, कोई श्रृंगार कर रही थी ऐसे तन्मय हो गई अपनी करधनी कमर में पहनने वाली गले में लगा ली और गले की जो हार था वो कहां लगा लिया पैर में पहनने, उनका अंचल घिसक से चलने लगा, किसी को होश नहीं जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में चले, किसी ने अपने की पत्नी को ऐसे देख करके अपने घरों में बंद कर दिया, वो अपने प्राणों को छोड़कर के सबसे पहले मिल गई उसके लिए गृह ने, उनके जितने अशुभ थे वो जल गए खत्म हो गए, उनके शुभ भी जल गए। जब तक शुभ और अशुभ रहता है कर्मों का अच्छा फल और बुरा फल रहता तब तक भगवान से मिलन नहीं होता, ये दोनों जलने चाहिए, भक्ति केवल होनी चाहिए, जब तक पुण्य और पाप रहेंगे भगवान से मिलना संभव नहीं, ये कर्मों के फल है। जब कर्म के फल नष्ट हो जाएंगे भक्ति हृदय में शुद्ध रूप से उदित होगी उस समय में ये कृष्ण मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। इसलिए उनकी पत्नियां घर से आगे निकल करके और कृष्ण से मिल गई और इसके बाद में कृष्ण के पास में पहुंची, कृष्ण ने कहा ओ आपका स्वागत देवियों आपका स्वागत है, भले कैसे आई, कहीं तुम्हारे घर में किसी अशुभ का तो उत्पात तो नहीं हुआ, ब्रज में कल्याण तो है, कोई ब्रज में विपत्ति तो नहीं आई कि हमारे पास में खाने के लिए आई। ओ माँ मैं समझ गया तुम लोग आई इसलिए वन की शोभा देखने के लिए, जमुना का उपकोष सुंदर उपवन और उसमें चंद्र उदित हो रहा है, चांद की शोभा अनुपम बढ़ रही है, शायद इसको देखने के लिए। देखो एक बात करो अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हूँ जल्दी से लौट, पति यदि लंगड़ा लूढ़ा जैसा भी हो कमाऊ नहीं हो दरिद्र भी हो या तक कुष्ठ व्याधि से भी युक्त हो तो भी उसको मत सोना चाहिए, इसलिए पतियों के पास नहीं चलना, बच्चों को आदर करो, किसी पति के साथ में मिलना ये बहुत ही भयंकर है, इसमें पाप लगता है, स्वर्ग से चुकी हो जाती है, इसलिए चले जाओ अपने पतियों की सेवा करो, इसमें धर्म की हानि होती है, बहुत कुछ उपदेश दिए। कृष्ण ने क्या कहा, गोपियों ने देखा कृष्ण में से मजाक कर रहे हैं या क्या, वो बड़ी जरा कुछ क्रोधित हो गई, अक्रोधित होकर के बोली आप तो हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो आप तो हमारे गुरु ठहरे, तो जहां गोविंद और गुरु यदि खड़े हों तो किसका पाव लगे, गुरु को पाव लगाना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु की सेवा और तब फिर गोविंद की, तो आपने इतना सुंदर उपदेश दिया है कि पतियों की सेवा करो तो आप मेरे गुरु हुए, तो पहले आपकी सेवा कर लें, आप अंगीकार करें तब फिर दूसरों की सेवा पति की सेवा करें। दूसरी बात हमने सुना है आपने कहा है सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमाम एकम शरण, सब धर्मों को छोड़ करके हमारे समीप में आओ हमारा शरणागत करो, तो हम तो यही हो करके आई हैं, सब धर्मों को छोड़ करके आपके पास में आई हैं, और यदि आप नहीं ग्रहण करते हैं आप धर्म के विरुद्ध काम करते हैं और आपको इसका फल नतीजा भोगना पड़ेगा, हमको नहीं, आप धर्म की शिक्षा देते हैं पहले आप धर्म अपने पालन कीजिए, यथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, हम जो जैसा जिस रूप में भगवान का भजन करता है कृष्ण कहते हैं मैं उसी रूप में उसकी उस भावना को मैं ग्रहण करता हूँ, यदि कोई पति रूप से करता है तो मैं उसका पति बन रहा, कोई भाई बनना चाहता है भाई बन, कोई सखा कोई चाहता है पुत्र रूप में सेवा करने के लिए तो मैं पुत्र बन जाता हूँ, तो हम यदि आई हैं और हमारी बात को हम आपसे मिलना चाहती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, यदि आपने ऐसा कहा है तो आपकी प्रतिज्ञा भंग का दोष आप पर पड़ेगा, और एक बात मूल एक ये है, का श्रियंग से कल्पदायक वेणु भीतर सम्मोहिता अर्चरिता न चले त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम इदं च निरुक्त रूपम जत भूध्रुम सृज पुलकान्य भ्रम। ये बतलाइए, हम तो सरल सहज रूप में स्त्री हैं और वो भी गोपियों की स्त्रियां हैं। सहज रूप में जहां रूप देखती हैं, जहां कोई गुण देखती हैं, जहां थोड़ा सा प्रेम देखती हैं, हम अपने को बेचती हैं। हमारी बात तो क्या, आपकी इस बंसी मधुर बेणु की भी और आपका ऐसा सुंदर जगत को मत करने वाला ये रूप लेकर के हमारे सामने क्यों आए, बंसी क्यों बजाई? ये तो दोष आपका है जो हमने पतियों को छोड़कर के भी आपके पास में हम जो आई हैं, ये दोष आपका है। इतना सुंदर रूप क्यों बनाया, हमारे समीप क्यों आए, बंसी क्यों बजाई इतनी मधुर? इसलिए दोष आपका है। क्यों, हमारी बात छोड़ो, ये जंगल के जो पशु हैं आज आप पर सब कुछ ने उछावर कर दिया, जो चेतन है वो अचेतन हो गया, जो अचेतन है वो चेतन हो जाता है। आज वृक्ष अपने टहलियों को मैं फूल फलों से भर करके आपके चरणों में उपहार दे रहे हैं, ये तो जड़ है, और नदियां जड़ है वो कमलों का फूल लेकर के आपके चरणों में उपहार दे रहे हैं, और मृग जो भागने वाले हैं वो जड़ होकर के आपके समीप में एकदम खड़े हैं, चिड़िया उड़ जाती है मनुष्य को देख करके और वो आपके कंधे पर इधर उधर आपके पास में बैठी हुई है, ये धर्म का विपर्यय, धर्म उल्टा हो जाता है आपके इस रूप से और बेनुवित से। तो हमारा ये धर्म उल्टा हुआ, हमने पतियों को छोड़कर के आपके पास में जो हम आई हैं, इसका दोष किस पर है? यदि दोष है तो आपके सिर पर है, और यदि इस पर भी आप नहीं ग्रहण करते तो धर्म उल्लंघन का आप पर पाप लगेगा, हमें पाप नहीं। और दूसरी बात, अभी यदि नहीं ग्रहण करते तो हम मर जाएंगी, और मरने का भी लाखों गोपियों का मरने का पाप आपके सिर पर चढ़ेगा, ये भी समझ रखिए। इस प्रकार से गोपियों के कहने पर कृष्ण परास्त हो गए और उनके साथ में रास आरंभ हो गए। रास करते 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 ऐसे तन्मय हो गए, उनके मुखों का मुखारविंद पर जो श्वेत होता है उसको अपने उत्तरीय से पहुंचने लगे, जो आज तक किसी को नहीं, सप्तभामा के लिए नहीं संभव हुआ, लक्ष्मी जी के लिए संभव नहीं है। उनके चरणों में नूपुर बांध रहे हैं, थक गई प्यारी, थक गई, और उनको चरण दबाने जा रहे हैं, किनके, उन गोपियों की, कौन, समस्त भगवानों के भी भगवान स्वयं कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, प्रेम के द्वारा ऐसा ही होता है, जहां प्रेम देखते कृष्ण उनके दिख जाते हैं, उनके हो जाते हैं। तत्पश्चात हुआ क्या, सब गोपियों को अभिमान हुआ कि कृष्ण हमारे साथ ही में नृत्य कर रहे हैं और हमारे हाथों में ही हाथ लगा करके नृत्य कर रहे हैं। राधिका जी ने देखा कि हमारे साथ ही, और जब उधर देखते हैं तो उन गोपियों के साथ में भी नृत्य कर रहे हैं। इसलिए गोपियों को ये हुआ कि हमारे समान सौभाग्यवती कोई नहीं है जो आज कृष्ण हमारे साथ ही अकेले नृत्य कर रहे हैं। और राधिका जी को मान हुआ और ये कहते हैं कि तुम ही हमारी प्यारी हो, आज तो हमारे सामने में दूसरों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, बस उसको मान हो गया। उसको दबाने के लिए, राधा जी का मान प्रसादन करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, उनको मनाने के लिए, और गोपियों का सौभाग्य मत उतारने के लिए क्या किए, अंतर्ध्यान हो गए राज, गोपियां विकल्प हो गई, खोजने लगी। ऐसे उनके अनुभव हुए जो आज तक कहीं नहीं पैदा हुए, शास्त्रों में लिखा है किंतु गोपियों में लिखा है। गोपियां एकदम पागल होकर के कृष्ण में तन्मय हो गई, तुलसी से पूछ रही है हमारे प्यारे से, डर गए, बड़े बड़े वृक्षों से कहती हैं आप तो बहुत ऊंचे हैं, देखते हैं कृष्ण हमारे किधर गए, कहीं नहीं जब पाती, कृष्ण के चरणों का चिन्हों का अनुगमन करके जा रही हैं। और उस समय में हठात देखा जो चरण के चिन्ह भी नहीं है, कृष्ण अत्यंत अंधकार में चले गए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण को हम खोजते खोजते यदि कभी बन ले जाएंगे तो कृष्ण को कष्ट होगा, कांटे कुछ उनके पैरों में लगे, अब चलो लौट चले। और जमुना के पुल पर जहाँ रास हो रहा था वहीं लौट गई, और वहां पर मिल करके तन्मय होकर के कीर्तन करने लगे। क्यों? किसम करने से भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं, तपस्या से नहीं, स्मरण से नहीं, दान से पुण्य से नहीं, कीर्तन के द्वारा ही भगवान प्रकट। विशेष करके कलयुग में इसलिए गोपियां अन्य होकर के हा कृष्ण करते ही, और अभी जो उन्होंने कीर्तन किया श्रीमद् भागवत में, जय सीतेम जन्मना ब्रज स्वैत इंदिरा स्वस्थ इत्यादि कीर्तन करने लगी थी। कुछ देर के बाद में कृष्ण प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? लजाते हुए गले में अपने कपड़े को उत्तरीय को बांध दिया और लजाते हुए मुस्कुराते हुए, हमने अपराध किया, और इस प्रकार से उनके सामने मनमत रूप में प्रकट हुए। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपको अभी गोपी गीत के संबंध में थोड़ा सा अभी कहेंगे, बतलाएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, और इसके बाद में अभी आज पूर्वार्ध होगा और कल हम लोग इसका उत्तरार्ध कहेंगे, और फिर अपने हमको कल परसों में जैसा जुगल गीत और भ्रमर गीत इत्यादि का बहुत गंभीर विषय है, बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। अभी जो बैंक गीत हुई, हमने एक महीने तक भाषण इस पर दिया था, एक महीना तक, कभी पूर्ण नहीं हुआ। हम दो दिन में, एक घंटे में, आध घंटे में कैसे समाप्त कर सकते, इसलिए संक्षेप में हम लोगों ने समय हो चुका है 7 बज चुका है और 7:30 बजने जा रहा है। मैं थोड़ा सा आज पूर्वार्ध तक गोपी गीत का हुआ, इसमें अंतिम श्लोक का मैं अर्थ कुछ बतला करके अपना आज की वक्तव्य समाप्त करूंगा। गोपियां आगे बढ़ी है, गोपियां विरह में कातर होकर के किस प्रकार से करें, इन चीजों को वही अनुभव करेगा जिसके हृदय में कुछ प्रेम हो कृष्ण के लिए पूरा। बहुत ऊंची चीज है। गोपियां और भी आगे कहने लगी, तव कथामृतम तत् जीवनम कविधीरेतम कल्मशाप श्रवण मंगलम सीमदातम भुवि गृहन्ति ते भूरिदा जना। दिना में सब होकर के गोपियां, एक ही प्रकार की गोपियां नहीं है, बहुत कोई राधा जी की स्वपक्षा है, कोई विवक्षा है, कोई तटस्थता है, कोई सुहृद है। चंद्रावली प्रवृत्ति जो दक्षिण भाव वाली है वो तो इस भाव से इसी श्लोक को कह रही है, तब कथामृतम तप्त जीवन। हे सखे, आपकी कथाएं ऐसी हैं तप्त जीवन। जीवन में यदि कोई दुखी हो तो हरि कथाओं के माध्यम से उसका जीवन सुखी हो सकता है। भगवान को पाने के लिए जितने भी तरीके हैं, संसार के समस्त दुखों को दूर करने के लिए जितने भी तरीके हैं, उपाय और साधन, उसमें सबसे अधिक बड़ा साधन क्या है? सबसे पहले श्रवण। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने से अपने आप दुख दूर हो जाए, आत्मा की अनुभूति भी हो। यदि आपकी हरि कथा में रुचि नहीं है और हरि नाम कर रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं, भागवत की कथा भी कह रहे हैं, किंतु हरि कथा में रुचि नहीं है श्रवण में, तो सभी आपके जो श्रम है बेकार के हैं। कुछ दिनों के बाद हरि नाम भी छूट जाएगा यदि हरि कथा में रुचि नहीं है, और जिसकी हरि कथा में रुचि है उसको सभी चीजें आ जाएंगी। कृष्ण कथा में रुचि होगी, नाम में रुचि होगी, सेवा में रुचि होगी, साधन में भी रुचि हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले बतलाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, सबसे पहले श्रवण। इसलिए गुरु के मुख से सुनो भगवान की लीला कथाओं को, इससे तुम्हारे दुख कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। और जो हरि कथा नहीं सुनता है, हरि नाम भी करता है तो कुछ दिनों के बाद में हरि नाम भी छोड़ देता है, साधु संग भी छोड़ देता है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। इसलिए ये गोपियां करिए, सब कथामृतम आपकी कथाएं अमृत हैं। संसार में दुखों से उत्तप्त हुआ व्यक्ति भी यदि हरि कथा सुने तो उसमें प्राणों का नव संचार हो जाता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। तप्त जीवनम गंभीरीतम। हमारे प्यार सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों ने आपकी कथाओं का गुणगान किया है, कथाएं सुनते हैं और उसकी बड़ी खुरी खुरी महिमा की है। गंभीरीतम कल्मषापम। भगवान की हरि कथा सुनने से सारे पाप जल जाते हैं और किसी उपाय से नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से परीक्षित जी ने हरि कथा सुनी, ब्रह्म श्राप कहां दूर हो गया। अजामी भगवान के कथा की बात को अपने बेटे का नाम रख करके त्यागने क्या हो गया। इसलिए इस जगत में सबसे बड़ी चीज है भगवान की कथाओं में रुचि होना। इसी के द्वारा से भगवान में प्रेम होगा और अंत में कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। कभी ने इसकी भूरी भूरी वर्णन, इसका महात्मा वर्णन किया। इस जगत में जो लोग भगवान की कथाओं को सुनाते हैं उनके समान जगत में और कोई दयालु नहीं है। अभी हिंदुजा अस्पताल हिंदुजा ने बनाए, इसमें लाखों लाखों का उपकार होता है। इसमें चोर डकैतों का भी इलाज होता है जिसने मर्डर कर दी है। अब वो मर्डर होने के बाद में करने के बाद में कहीं चोट लग गई और वो डकैत वहां पर इलाज कराया, इलाज करने के बाद ठीक हो गया तो उसको जिसने गोली मारी थी उसके घर में गया और उसके परिवार वाले 10-20-50 को वो खून दिया गोली से। अब ये जो खूना इसका पाप किस पर लगेगा। जिस अस्पताल में उसकी चिकित्सा हुई, जिन डॉक्टरों ने किया, जिन्होंने अस्पताल बनाया, उनको भी उसका पाप लेना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित भोग करना होगा। इसलिए जगत में कर्म सबसे, कर्म अच्छे सब नहीं, सभी कर्म अच्छे हैं, इससे पाप नहीं झूलता। ये सब समय एक तरह से सब समय दुखपूर्ण ही ये कर्म है, इसलिए इसे नहीं भगवान की कथाओं से हो जाता है। इसलिए संसार में जो हरि कथा का वितरण करता है बिना मूल्य का, ऐसे नहीं यह हरि कथा कहीं नहीं हमको 5,000 रुपये चाहिए तो मैं 7 दिन या 10,000-50,000 रुपये लेंगे तो भागवत का पाठ करेंगे। अरे वो तो नरक में जाएंगे, उनके कथा सुनने से कुछ नहीं होता। जो लोग उदार चित्त से बिना पैसे का दया के बस होकर के भगवान की कथाओं को सुनाते हैं उनके समाज को दयालु नहीं। मुझे यहाँ आया देखा कमल बना हुआ है, लोग अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। 1 घंटा समय इसमें बर्बाद होता, उसमें यदि कुछ हरी कथा होती कितना उसमें होता, ये सब बर्बाद हो जाता है। इसमें मैं समझता हूँ कि कम से कम तक 1,00,000 रुपया इसके बनाने में सज्जा और इसके लिए खर्च हुआ, हम लोगों के लिए नहीं। हम लोग इसमें से एक पैसा भी लेना नहीं चाहते, पैसे के लिए नहीं, लोगों का उपकार हो, भगवान की कथाओं को सुने और उनका जीवन धन्य हो जाए। इतने सुनने वाले में से यदि किसी ने, एक व्यक्ति ने भी इन उपदेशों को धारण करके आज से प्याज लहसुन मांस मछली इत्यादि छोड़ करके आज से हरिनाम करना आरंभ किया, राधा जी के मंत्र में दीक्षित होकर के भजन करना आरंभ किया, मैं समझ लिया कि आज हमारा परिश्रम सफल। इसलिए संसार में सबसे बड़ा उपकारी कौन है, जो भगवान की कथाओं को निःशुल्क दया के पर्वत होकर के कृष्ण की ऐसी मधुर लीलाओं का श्रवण कराते हैं जिससे पाप ताप दूर हो जाते हैं, कृष्ण के चरणों में उत्तम भक्ति प्राप्त होती। ब्रज की भक्ति साधारण नहीं, वैकुंठ वाली नहीं, ब्रज की भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे लोग भूरीदास संसार में सबसे बड़े दयालु और दानी हैं। ये लाखों लाखों यूनिवर्सिटियों को बनाने वाले, कॉलेजों को बनाने वाले, अस्पतालों को बनाने वाले, करोड़ों रुपया दान करने वाले, ये दानी नहीं है, उसे फिर कर्म चक्र में घूमना पड़ेगा। किंतु जो हरि कथा सुनाने वाले हैं उनकी तो बात ही क्या, जो सुनने वाले हैं सबको कृष्ण के धाम में पहुंचा देंगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होगी, कॉलेजों में स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं होगी। जिस स्कूल और कॉलेजों में धूम्रपान वही वहां के प्रोफेसर है, जिसने आपकी कथाओं को सुना उसका जीवन भीष्म, आज हम उसके साक्षी हैं। आज हम लोगों ने बिना शर्त बिना किसी बात के हम तुमसे प्रेम किया, तुम्हारी कथाओं को तुम्हारा नाम करती है, और हमारी दुर्गति आज हमको पथ में बैठा करके एक पथ की भिखारिणी बना दिया। हमने अपने बेटों को छोड़ा, पतियों को छोड़ा, कुल धर्म छोड़ा, लज्जा छोड़ी आपकी प्रीति के लिए, और आज हमें इस गंभीर वन में छोड़ करके, हमें छोड़ करके न जाने कहाँ चले गए। हम बिलबिला रहे हैं, आप देख रहे हैं, किंतु आपको दया नहीं। यदि हम पहले से आपकी कथाओं को नहीं सुनती आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए आपकी कथाएं क्या है, बीज है, अमृत नहीं, मृतम मारने वाली, हमारे हमें उस कथाओं ने ही मारना। तप्त जीवनम, जीवन को तप्त करने वाली है आपकी कथाएं। हम पहले अपने घर में सुखी थी, किंतु जब से आपकी कथाएं सुनी हम पागल हो गई, और घर बिना द्वार के हो गई, और कैसे हो गए हमारा जीवन उत्तप्त, कहाँ कृष्ण मिले, कहाँ कृष्ण मिलेंगे, तब भी रोती थी, और अब जब मिली तो हमें छोड़ करके चले गए, अभी हम रो रही हैं। द्रौपदी जी को देखो तो कृष्ण को पाया ना, कृष्ण को सखा बनाया, भरी सभा में कैसी उसकी दुर्गति हो रही है। मिले तब और न मिले तब उसके लिए रोना ही रोना, भक्ति ये रोने का है। कृष्ण मिलेंगे तब भी रोएंगे, और नहीं मिलेंगे तब भी। इसलिए कहती आपकी कथाएं कैसी हैं, ये मारक है, जीवन को तप्त करने वाली है। कैसी, जिसने कृष्ण नाम सुना, कृष्ण कथाएं, वो पागल होकर के घर बार छोड़ देता है, छोड़ करके वृंदावन में पहुंचता है, अपना घर बार नहीं, उसके घर वाले रोते हैं, और ये रोता है कृष्ण के लिए, हा कृष्ण आप कहां, हे कृष्ण कहां, हे राधे कहां, रोता है। जो न तप्त हो गया है, तप्त जीवनम कब भी, कवियों ने जो ये ज्ञान किया, जो आपकी कथाएं अमृत हैं, वो झूठे हैं, नंबर ही वन। क्यों, हम लोग तो कृष्ण की कथाएं सब समय सुनती हैं, उनसे बातचीत भी करती हैं, आज हम क्यों तप्त हो गए, हमें छोड़ करके ये दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। इसलिए कवियों ने झूठे का कहा, कैसे, ये घोड़ा हवा में उड़ रहा है, घोड़ा कहीं हवा में उड़ता है, कभी ने कल्पना करके ऐसी लिखी कि घोड़ा आकाश में उड़ रहा है, तो ऐसे ही ये कवियों की कल्पना है। हरि कथा से जीवन को तप्त हो जाता है, कहाँ दुख दूर होते हैं, हमारे तो और दुख, इसे बढ़कर के दुख क्या हो सकता है, जो कृष्ण मिलकर के भी हमें छोड़ करके चले गए और विलाप कर रहे। इस संसार में सबसे बड़े मारने वाले, हत्या करने वाले कौन है, सबसे निष्ठुर कौन है, जो बगल में भागवत की पोथी लेकर के दबा कर आते हैं और कहते हैं कि बिना पैसा तुम लोगों को सुनाएंगे, प्रोपेगेंडा करते हैं बंबई नगरी में, आ जाओ यहाँ पर हरी कथा होगी, बिना पैसे निःशुल्क की हो जाएगी, होगी, और हरी कथा सुनाएंगे, पैसा नहीं लगेगा, और आप लोग सुखी हो जाएंगे, ये भरोसा देकर के बुलाते हैं। उनके जैसा हत्यारा जगत में कोई नहीं, क्यों, गोपियां कह रहे हैं, इसके बहाने से कृष्ण कथा सुना करके और घर वालों से उनका जो प्यार था हटा दिया, बेटा ने सुना मैया को, बाप को छोड़ दिया, पत्नी ने हरि कथा सुनी अपने पति को छोड़ दिया, पति ने सुना हरि कथा वो अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके वृंदावन में पहुंच गया, लंगोटी बांध करके यमुना के किनारे, घर नहीं कुछ नहीं, न खाना न पीना, दिन रात रोता है, घर वाले भी रोते हैं, तो ऐसा निष्ठुर कौन होगा। इसलिए संसार में यदि कोई निष्ठुर है तो वो तिलकधारी, चोटी पहनाने वाले, गले में तुलसी माला और तिलक लगा करके, बगल में भागवत की पोथी रख करके, बिना पैसे घर घर में जाकर के लोगों के पास में बुला करके भागवत की कथा सुनाते हैं, उनका जैसा निष्ठुर और कोई नहीं है। यदि आप घर में आनंद से रहना चाहते हैं, पुत्र पत्नी और बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं, पत्नियों के साथ में रहते, खबरदार इन तिलकधारी लोगों के साथ में कभी भी भगवान की कथा मत सुनो, घर में आनंद से रहो, घर में पति पुत्र के साथ में रहो, और नहीं तो ये बगल में पोथी दबाए हुए घर में पहुंच जाएंगे, और कृष्ण की कथाओं सुन करके तुझे पागल बना देंगे, घर बार छोड़ करके तू रोएगी, तुम्हारा पति भी रोएगा तुम्हारे घर बार में, इसलिए बड़े निष्ठुर है इसे जरा सावधान रहना। इसलिए कवि ने ऐसा कहा, देखो वृंदावन में मत जाना, वृंदावन में क्यों न जाऊं, वहां पर कुछ असुविधा है जाने, तुम्हारा संसार गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो जाऊंगा जरूर जरूरत है। अच्छा तो देखो वृंदावन में जाना, केसी घाट में मत जाना, तो हमें तो केसी घाट में ही स्नान करना है। अच्छा तो केसी घाट में स्नान करना, किंतु वहीं पास में गोविंद जी का मंदिर है, खबरदार उसमें मत जाना, यदि जाएगा तो वहां पर त्रिभंग ठाम अत्यंत सुंदर बंसी बजाते हुए और वहां पर गोविंद जी हैं, उनका दर्शन करते ही तुम्हारा सब संसार पलट जाएगा। फिर घर में नौ लौटना है, तुम तो वृंदावन में ही मीराबाई जैसे रह गई और सब जैसे रह गए, ऐसे ही हो जाएगी, इसलिए जरूर संसार का शोक भोगना चाहते हैं तो इनकी कथाओं का मत सुनना। गोपियां क्या कह रही हैं, जभी जीवन में सुखी रहना चाहते हो, कृष्ण में प्रेम चाहते हो, तो ये उल्टे रूप में उत्प्रेक्षा के रूप में ये करें, यदि हरि कथा ही श्रवण करना चाहिए, हरि कथा के बिना कोई भी भगवान को प्राप्ति नहीं हो सकती है, कृष्ण का विरह समझ नहीं है। इसलिए आज यही कह करके अपनी कथा का विराम देता हूँ, आप लोग और भी संख्या में आइए और हरि कथा सुनिए, एकदम उसमें प्रमत्त हो जाइए, जीवन का यही सार है, इससे बढ़कर के और कुछ सार है। यदि संसार को भूल जाए, जन्म मरण प्रवाह बंद हो जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, यही जीवन का सार है, यही गोपियों के कहने का तात्पर्य है। अभी अभी कीर्तन एक होगा, अभी कीर्तन कर सकते हैं।
मैं डॉक्टर कमलेश खंडेलवाल श्री गुरुदेव का दिव्य प्रवचन श्रवण करने के लिए अभिनंदन करने के लिए पधारे हैं। नायर हॉस्पिटल से आपने MBBS और सर्जरी की शिक्षा पाई। श्री खंडेलवाल जी सुविख्यात सर्जन हैं। इनके विषय में कहावत है कि डॉक्टर खंडेलवाल ऐसे डॉक्टर हैं जो कभी किसी को अनावश्यक रूप से चीर फाड़ की सलाह नहीं देते। सर्जरी के क्षेत्र में आपने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। कैंसर, अपेंडिक्स, हर्निया, पथरी आदि बीमारियों का आप बड़ी कुशलता से ऑपरेट करते हैं। आधुनिक कीनोट सर्जरी, टेलीस्कोप और कैमरों की मदद से भी डॉक्टर साहब अपने ऑपरेशनों को बड़ी कुशलता से और सहजता से पूर्ण कर लिया करते हैं। डॉक्टर खंडेलवाल, नायर हॉस्पिटल और राजावाड़ी हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक काम करते रहे। सन 1985 से उन्होंने तारदेव क्षेत्र मुंबई में अपना व्यक्तिगत क्लिनिक खोला है। भाटिया हॉस्पिटल, कोठारी हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल एवं कम्बाला हॉस्पिटल से मरीजों की विशेष निरीक्षण के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब बड़े सरल हृदय, मृदुभाषी और दयालु हृदय के व्यक्ति हैं। सच पूछा जाए तो आप डॉक्टरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी पत्नी श्रीमती सरिता देवी जी अपने पति के समान बड़ी सहज हृदय की और सरल भोली भाली हैं। उनकी लड़की को मैं अपने स्कूल में पढ़ाती हूँ, निधि खंडेलवाल, हमारे यहाँ की फर्स्ट रैंकर और बहुत मिस्टीरियस लड़की है, बड़ी स्वीट लड़की। डॉक्टर साहब आप मंच पर आए और श्री महाराज जी का अभिनंदन कर उन्हें माल्यार्पण करें।
जी, आयुर्वेद सज्जनों, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है कि आप जैसे संत के संबंध में मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्रदान किया गया है। यों तो यह भारत भूमि संतों और साधुओं की तपोभूमि है और महाराज जी उन कोटि के संतों में आते हैं जिन पर कोई संत भी अब गर्व कर सकता है। श्री महाराज जी ने 25 या 26 वर्ष की अवस्था में, जो कि एक अवस्था है जिसमें कोई आदमी ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम की तरफ प्रवेश करता है, लेकिन उन्होंने समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर अपनी तरफ और अपना मन सबसे वृंदावन में रम लिया गया है। आप भक्ति रस के महान आचार्य हैं, भक्ति परंपरा के प्रतीक भी हैं। आपका संपूर्ण जीवन राधा कृष्णन की भक्ति में सारोबार है। आपके मुख से श्री कृष्ण लीलाओं की ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित होती है कि जिसके छींटों से श्रोता भावपूर्ण हो जाता है और राधे राधे की तुमुल ध्वनि में अपने आप को खोता हुआ पाता है। आप सबकी ऐसी साकार मूर्ति हैं जिसे भक्ति रस के लोभी भी चातकीय दृष्टि से रात दिन आस्वादित करना चाहते हैं और भक्त आपके सानिध्य में पुकारने लगता है। भक्ति शास्त्रों में गुरु वैष्णव का स्थान भगवत तत्व से भी ऊपर बताया गया है। जैसे कि सची कहा गया है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और उसमें भी आप जैसे परम वैष्णव की महिमा का वर्णन करना एक मुश्किल ही काम है, एक बहुत ही कठिन काम है। हमारा धर्म, मैं जैसे कि एक सर्जन हूँ, हमारा काम है शरीर की शल्य चिकित्सा कर आत्मा को एक बार नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आप उस आत्मा को परमात्म तत्व से स्थापित कर उसे इस लोक की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक भक्त बना देते हैं और इसी भूतल पर आपका ही जीवन धन्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि मैं इस लोक और परलोक में अपने जीवन को चरणार्थ कर सकूं। मैं इससे ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूं और यहीं पर अपना संबंध कर सकता हूँ।
डॉक्टर साहब, आज के प्रसाद वितरण की व्यवस्था डॉक्टर कमलेश खंडेलवाल उनकी धर्मपत्नी की ओर से है और अब की कृपा से जिन महान विभूति से हम मिल रहे हैं उनका परिचय हमारे किसी के लिए भी नया नहीं है, क्योंकि भारत में जितनी भी साहित्यिक संस्थाएं हैं वे डॉक्टर गिरिजा शंकर द्विवेदी जी को पुरस्कृत कर गौरवान्वित होती हैं। श्री द्विवेदी जी कृपया मंच पर आए और अपनी दिव्य भावना और आध्यात्मिक भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से, भक्तिपूर्ण रसमय पूर्ण भावनाओं से महाराज जी को अभिनंदन करें, माल्यार्पण करें। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, राष्ट्रभाषा वाचस्पति, सरस्वती सम्मान, विद्या अलंकार, रहीम खान खाना पुरस्कार, भारतीय गौरव पुरस्कार, संपादक शिरोमणि, साहित्य संपादक शिरोमणि, साहित्य श्री, राय बरेली रत्न इत्यादि विभिन्न पुरस्कारों को प्रदान कर हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने को धन्य मानते रहे हैं। साहित्य से संबंधित कोई भी विशिष्ट कार्यक्रम देवी जी के बिना संपन्न होने की संभावना ही नहीं की जा सकती। यदि किसी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देना हो तो सबसे पहले आपसे परामर्श लिया जाता है। आपके संपादन में नवनीत पत्रिका देश विदेश में अपने शिष्ट एवं ज्ञानवर्धक साहित्य के लिए सुप्रसिद्ध है। मेरे ऊपर तो आपका अहेतुक वात्सल्य है। हमारे विद्यालय के विशिष्ट कार्यक्रमों में पधारकर आपने हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाई है। अंकल, मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखना है। देश विदेश में सुविख्यात वरिष्ठ साहित्यकार, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की साहित्यिक परिचर्चाओं के कुशल संचालक भगवान श्री कृष्ण धारावाहिक जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है उसकी सलाहकार समिति के आप सम्मानित सदस्य हैं और क्योंकि रोमांचित व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही रोमांच से पूर्ण होती है, इसलिए हम सभी रोमांचित हैं कि आप महाराज जी के विषय में क्या कह रहे हैं।